बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तज़किया बिल्कुरान के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत हूँ। इस प्रोग्राम के तहत हम रमज़ान में उन सिफात का मुताला कर रहे हैं जो हमारे नफ्स पर असरअंदाज हो सकती हैं। अगर हम उनको समझ कर अपनाने की कोशिश करें तो वो हमारे नफ्स का तज़किया करेंगी। आज हमने जो सिफत चुनी है वो अल-मोमिन है, यानी ईमान वाला। मोमिन और मोमिनात, मोमिनीन और मोमिनात, ये दो सिफात कुरान मजीद में इकट्ठी भी आई हैं। जैसा मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में डायरेक्ट इंसानों से मुखातिब है, मर्द औरत का फ़र्क किए बगैर, लेकिन कहीं कहीं स्ट्रेस के लिए, बात की अहमियत के लिए अल्लाह ताला ने दोनों का जिक्र किया है। मोमिन के मानी हमारी आम जो ज़िंदगी है, मजहबी ज़िंदगी, इस्लाम के जितने भी लोग मानने वाले हैं, वो दरअसल मोमिन के मानी ईमान वाले के लेते हैं। ये इसका इस्तलाही मानी है, यानी ईमान इस्लाम के दायरे के अंदर, दीन के अलूम के अंदर या दीन के पहलू से। वैसे मोमिन के मानी जो हैं वो बात मानने वाले के हैं, जो लुगवी मानी है इसके। तो बात मानने वाला जो है वो दरअसल इसी से ईमान वाला निकलता है कि वो हक बात को मानता है, सच्ची बातों को मानता है, वो हट धर्म नहीं है, वो उजट नहीं है, वो तासुब का शिकार नहीं है। जैसे ही उसके सामने बात आई उसने मान ली, तो बात मानने से ईमान वाले का मफहूम इसमें पैदा हो जाता है। दूसरे इसके मानी जो हैं मोमिन के, वो अमन में होने के हैं, मामून होने के हैं, महफूज होने के हैं। तो अमन में होना, मामून होना, महफूज होना, ये भी मोमिन का हिस्सा है। तो गोया यानी उसका लुगवी मानी है, तो गोया वो खुदा की पकड़ से मामून है अगर वो ईमान वाला है। लेकिन ईमान वाला दीन के अंदर जो अल्लाह के यहाँ मयार है उसको हम अगली आयात में समझने की कोशिश करते हैं। ये सूरह अनफाल की आयत 2, 3 और 4 है। इसमें अल्लाह ताला ने अल्लाह के नज़दीक मोमिन क्या है उसकी चंद सिफात का यहाँ तज़किरा किया। ये चंद सिफात दायरा जामे नहीं है, वो आगे भी हम मजीद चीज़ों को देखेंगे। तो फरमाया कि इन्नमल मोमिनून, मोमिन सिर्फ वो हैं, अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, कि जिनके सामने अगर अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उनके दिल घबरा जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब खुदा के नाम से कोई चीज़ सामने लाई जाती है, खुदा का हवाला जब आ जाता है, खुदा का जिक्र जब छिड़ जाता है कि कल खुदा के सामने तुमने जवाब देना है, क्या कर रहे हो, तो ये ईमान वालों के हाँ ये घबराहट दिल में आ जाती है कि हमने कल खुदा को फेस करना है। जब खुदा को फेस करना है तो उनके अंदर फिर खुदा खौफी जो है वो पूरे जज्बे के साथ, पूरे शऊर के साथ, पूरी कुव्वत के साथ मौजूद रहती है। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब इनके ऊपर अल्लाह की आयतें पढ़ के सुनाई जाती हैं तो इनके ईमान में इजाफा करती है। दुनिया में जो भी बातें होती हैं, जो अच्छी बातें होती हैं वो अच्छे लोगों का हौसला बढ़ाती हैं, जो बुरी बातें होती हैं वो बुरे लोगों का हौसला बढ़ाती हैं। तो मसलन एक बुरा आदमी को जब किसी और की बुराई बताई जाएगी तो वो कहेगा चलो कुछ और भी लोग हैं जो ऐसा करते हैं। और ऐसा ही ईमान वाले जो हैं, जब इनको ईमान वाली बातें बताई जाती हैं, नेकी की बातें, सच्ची बातें बताई जाती हैं, तो इनके ईमान में इजाफा होता है। इजाफा होने के कई पहलू हैं। मसलन ये कि कोई जहन में सवाल था, आयत ने उस सवाल को जवाब दे दिया। कोई नफ्सियाती उलझन थी, खुदा ने वो दूर कर दी अपनी आयत के जरिए से। कोई जहन में एतराज सा उठ रहा था, उसका जवाब आ गया। तो आयतें जब जब कुरान की सामने आती हैं तो वो अपना ये असर डालती जाती हैं मोमिनों के ऊपर कि उनके अंदर से वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता निकलती जाती है, जो कोई रैब है, कोई शक है, कोई मर्ज है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ खटक है, कुछ सवालात हैं। तो आयतें जैसे जैसे आती जाती हैं वो उनको उनके ईमान में इजाफा करती जाती हैं। तो मोमिन का ईमान इजाफा होता है कुरान मजीद की आयात पढ़कर। वह अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। रब पर भरोसा ईमान के पहलू से यहाँ ज़ेर बहस है कि वो खुदा पर भरोसा करते हैं अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए। इसमें वो एलिमेंट भी शामिल है जो हम पिछली दो सिफात में पढ़ चुके हैं, अपने मामले को खुदा के सुपुर्द कर देना। खुदा को सुपुर्द कर देना यानी अपने अपनी ज़िंदगी, अपना माल, अपनी दौलत खुदा के हवाले कर देने का मतलब ये होता है कि भाई खुदा जैसे रखे मैं वैसा राजी, और खुदा के ऊपर मेरा भरोसा है, वो अच्छा बुरा मेरे साथ जो करेगा वो अपनी हिकमतों के तहत कर रहा है, वो मुझे आजमाने के लिए कर रहा है, इसलिए मुझे फिक्र नहीं है। ऊंचा नीच जिंदगी में आता रहता है, कभी पैसा आ गया, कभी चला गया, कभी सेहत आ गई, कभी बीमारी आ गई। ये खुदा का रखने का अंदाज है इस दुनिया में, क्योंकि उसने ये दुनिया इम्तिहान के लिए बनाई है। वाला रब्बेन यतवक्कलून में मायूसी का पहलू भी होता है कि आदमी मायूस नहीं है, वो खुदा पे भरोसा करके बैठा हुआ है कि कोई बात नहीं, सब मुश्किल है, ये हल हो जाएगी, और मौत तक भी हल नहीं होती तो कल क्यामत वाले दिन उसको एक रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो इसलिए वो अपने रब पर भरोसा रखता है, मायूस नहीं होता। वाला रब्बेन यतवक्कलून का एक और पहलू है कि वो घमंड में नहीं आता, क्योंकि उसको पता है कि जो कुछ मुझे मिला है खुदा की तरफ से मिला है। अल्लज़ीना युकीमून अस्सलात, मोमिन जो है वो खुदा की बंदगी करते हैं, इबादत करते हैं। अल्लाह की बंदगी, ताबुद, ये बहुत नुमाया चीज़ों में से है मोमिन की, क्योंकि दो हक हैं बड़े, एक अल्लाह का और एक इंसानों का। तो जो हक अदा करने वाला है वही नेक आदमी है, वही मोमिन है। तो अल्लाह का हक है कि उसकी बंदगी की जाए, तो वो बंदगी करता है, नमाज उसकी नुमाइंदगी करती है। वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, ये बंदों के हक हैं जो अदा करने हैं, क्योंकि खुदा ने जो बताया है कि मैंने मईशत को, जिंदगी को, जिंदगी की नेमतों को, जिंदगी के अपॉर्चुनिटीज को, जिंदगी के मौके को, जिंदगी में सलाहियतों को बांटा हुआ है, और किसी को कुछ दे दिया है, किसी को कुछ दे दिया है, किसी को अमीर बना दिया है, किसी को गरीब बना दिया है, किसी को हुनर दे दिया है, किसी को हुनर का मोहताज बना दिया है, किसी को इल्म दे दिया है, किसी को तालिब इल्म बना दिया है। तो यूं जिंदगी को बांट दिया गया है। तो अब अच्छा काम, अच्छा मोमिन वही है जो अपनी कमाई में से गरीबों की मदद करने वाला हो, भूखों को खाना खिलाने वाला हो। तो वमिम्मा, तो ये हक अदा करना है लोगों का, एक तरफ खुदा का हक अदा किया सलात के जरिए से, और दूसरी तरफ बंदों का हक अदा किया उनके ऊपर अपने अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से खर्च करके। मिम्मा रज़क़ना का मतलब ये होता है कि अल्लाह ने जो दिया है, जो कुछ अल्लाह ने दिया है, जो कुछ दिया है हमारी अपनी कमाई। कानून जैसे लोग ये ख्याल करते थे कि शायद उनको अपने अकल और अपनी जहानत से ये सब कुछ मिला है। उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, यही लोग दरअसल पक्के मोमिन हैं, सच्चे मोमिन हैं। तो ये चीजें अगर नहीं आई तो ईमान वाला मोमिन नहीं हुआ। हो सकता है कि बातें तो मान रहा हो लेकिन ईमान वाला नहीं हुआ। लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम, ऐसे लोगों के ही अल्लाह के पास बुलंद दरजात हैं। मग़फ़िरतुन, और बख्शिश है। मग़फ़िरतुन, मग़फ़िरत का ये पहलू होता है कि भाई कोताहियां तो होती हैं इंसानों से, तो अल्लाह ताला मग़फ़िरत के मानी यह है कि इंसानों से कोताहियां तो होती हैं लेकिन अल्लाह ताला उनके ऊपर पर्दापोशी कर देगा, उनको माफ कर देगा। वरिज़्कुन करीम, करीम के मानी बहुत सारे किए जाते हैं, मुअज़्ज़ज़ भी है, लेकिन रिज़्कुन करीम जब रिस्क के साथ आता है तो बड़ा खुला रिस्क। सखी शख्स, करीम, करीमुन नफ्स उस शख्स को कहते हैं, उस हस्ती को कहते हैं जो सखी हो, कमाल दर्जे की मेहरबानी, करम नवाजी वाली हो। तो रिज़्कुन करीम उस ज़ात की तरफ से रिस्क मिलने वाला है जो करीम है, यानी खुला रिस्क, उसमें कोई कमी नहीं होगी। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे दीन के अंदर, ये ईमान के अंदर ये शामिल है कि हम ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के यहाँ रिस्क कहीं पाएंगे। फल्लाहु अहक्कु अन तख्शौहु इन कुंतुम मोमिनीन, ये सूरह तौबा की आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने ये कहा है कि अल्लाह ताला ज्यादा हकदार है कि तुम उससे रहो। ईमान के बावजूद एक कमजोरी आ जाती है कि हम लोगों से डर रहे होते हैं। आदमी आदमियों से डरता है, अपने इर्द गिर्द के लोगों से डरता है, अपने समाज से डरता है, अपने बहन भाइयों से डरता है, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि हक के मामले में, हक अदा करने का मामला हो या हक कहने का मामला हो या हक मानने का मामला हो, उसमें अगर कोई किसी से डरना है तो अल्लाह से डरना है, क्योंकि यहाँ की जितनी भी तकलीफें हैं वो आर्जी हैं, लेकिन खुदा के यहाँ से जो सजा मिलने का इम्कान है वो बड़ी सख्त है। तो इसलिए अल्लाह ताला ज़्यादा हकदार है अपने खालिक होने की वजह से, अपना खुदा होने की वजह से, और हमारा मालिक वाका होने की वजह से, और क़यामत वाले दिन फैसले का मालिक होने की वजह से, फैसले उसने करने हैं। तो ईमान दरअसल खुदा से डरने का नाम है। इस आयत से ये बात फूटी पड़ रही है कि जब कोई आदमी मोमिन होता है तो दरअसल वो अल्लाह ताला से डरता है। तो अल्लाह ने यही इसलिए कहा कि अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह से, तो इस आयत में अल्लाह ताला ने यही कहा है कि अगर तुम मोमिन हो तो फिर तुम्हारे ईमान का लाजमी तकाजा है कि तुम अल्लाह ही से डरो, और अल्लाह ईमान की वजह से ज्यादा हकदार है कि तुम उससे डरो। ये सूरह अल-बकरा की आयत है। कुल बिसमा यामुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुंतुम मोमिनीन, ये यहूद को अल्लाह ताला ने जुमला कहा है कि उन्होंने शिर्क भी किए, उन्होंने सब्त यानी उनके जो इबादत का दिन था उसमें कोताहियां भी की, इसी तरह उन्होंने नबियों को भी कत्ल करने की कोशिश की, पता नहीं क्या कुछ पूरे जराइम बताने के बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि कुल बेसमा या अमरुकुम बही ईमान, अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम्हें ये हरकतें क्या करते फिरते हो, इन कुन तुम मोमिनीन, तो तुम्हारा ईमान तो बहुत ही बुरा चीज का हुक्म दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये लोग ईमान वाले होते तो ये हरकतें ना करते। तो मुराद क्या हुई, मुराद ये हुई कि ईमान इतना ताकतवर होना चाहिए कि वो हमारी बुराइयों को रोक सके, हम नहायत गुस्से में हों, और ईमान कुरान ने जो पहले कहा है कि जब अल्लाह का नाम ले लिया जाए तो वजलत कुलूबुहुम, बहुत गुस्सा शदीद चढ़ा हुआ था और आपको आकर बताया कि खुदा से डरो क्या कर रहे हो, और बिल्कुल सब चीज खत्म हो गई। तो ये जिस दिन मोमिनों जिस आदमी के अंदर ये चीज पैदा हो जाए तो उसको समझना चाहिए कि वो ईमान के एक मुनासिब दर्जे पर खड़ा है। ये सूरह अल-माईदा की आयत है, वत्तकुल्लाह इन कुंतुम मोमिनीन, इसमें फरमाया है कि अल्लाह से डरो अगर तुम मोमिन हो। ये आयत जिस शाबस बात में आई है वहां मुसलमानों के अंदर दीन की और खुदा की हमीयत का पहलू है कि मसलन हम इस तरह के मौके पर बोल सकते हैं कि भाई अल्लाह से डरो, जैसे हम कहते हैं अल्लाह से डरो का जब कोई बुरा काम करने लगता है तो सोतम कहते हैं अल्लाह से डरो मोमिन नहीं हो, तो यही बिल्कुल ठीक यही बात है। तो खुदा खौफी दरअसल ईमान का लाजमी हिस्सा है। वहीला मदियन आखा हम शुएब, यह हजरत शुएब की कौम का मदियन में जो रहती थी उसके साथ मामला है जो अल्लाह तआला ने बयान किया है। काले या कौम, उन्होंने कहा है कि ऐ मेरे लोगो, उबदुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैर, अल्लाह की बंदगी करो, तुम्हारा उसके अलावा कोई इलाह नहीं है। कद जाअतकुम बय्यिनतुन, और मैं तुम्हारे पास जो अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूँ उसमें बिल्कुल वाज़े दो टोक बातें आ गई हैं, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, फाऔफुल कैला वल मीज़ाना वला तबख़सुन नास अशियाहुम, तो तुम नाप भी पूरा करो और वजन भी पूरा करो और लोगों को चीज़ें कम तोल कर ना दिया करो, वला तुफ्सिदु फिल अर्ज़, और यूं दुनिया में फसाद बरपा ना करो जबकि उसकी इसलाह कर दी गई है, ज़ालिकुम खैरुन लकुम इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो ये करना तुम्हारे लिए बेहतर है। तो क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि ईमान वजन सही तोलता है, अमानतदारी सिखाता है, दयानतदारी सिखाता है, लोगों को चीज़ें जो उनका हक है पूरा अदा करने का सिखाता है। तो जो आदमी वजन पूरा नहीं करता, जो आदमी नाप पूरा नहीं करता, जो आदमी इंसाफ के मुताबिक जितनी कीमत है उसके मुताबिक उसको चीज़ नहीं देता, घटिया चीज़ दे देता है, तो समझिए कि उसका ईमान कमज़ोर है, उसके पास ईमान दरअसल है ही नहीं है। तो ईमान दरअसल दयानतदारी का नाम भी है, बंदगी का नाम भी है, हकूक अदा करने का नाम भी है, दयानतदारी का नाम भी है। और एक आदमी दफ्तर में बैठा हुआ रोजी कमा रहा है और काम नहीं कर रहा है तो ये मोमिन नहीं है, अगरचे वो अपने ख्याल में कोई बड़ा जुर्म नहीं कर रहा लेकिन अल्लाह के नज़दीक ये बड़ा संगीन मामला होता है। ये सूरह नूर की आयत है, सैयदा आयशा के ऊपर जिस जमाने में इल्ज़ाम लगा है उस ज़माने में जो लोग फितना बर्पा कर रहे थे उनको इसमें डांटा गया है और उनके ईमान को सामने रख कर ये कहा गया है कि तुम्हें तो ये करना चाहिए था। तो हुआ ये कि एक आदमी ने एक गलत बात फैलाई और सारे लोग उठको, कोई उधर बयान कर रहा है, उधर बयान कर रहा है, क्योंकि वो जो जो भी लोग ऐसा कर रहे थे वो फितना पसंद थे और चाहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के ऊपर तोहमत आए, तो उन्होंने वो इधर उधर अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। तो बतकूलना भी अफवाहें का मतलब यही है कि जिसको हम अफवाह कहते हैं वो इसी से निकला हुआ है कि बस मुंह से बात निकली और मुंह से मुंह पर दूसरे मुंह पर तीसरे मुंह पर चौथे मुंह पर चलती चली गई, तो अफवाह इसी को कहते हैं जिसका सबूत कोई ना हो। बतकूलना भी अफवाह को मसले मुंह है मुराद इससे, तो तुम मुंह से बातें बकते गा रहे हो, मा लैसा लका लकुम बिही इल्म, जिसका तुम्हारे पास सबूत नहीं है। तो मोमिन अपनी जुबान से वो बात नहीं निकालता जिसका सबूत ना हो, वो नहायत नपीतुली बात, हाँ अगर कोई तजिया कर रहा है तो वो फिर कहेगा मैं तजिया कर रहा हूँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तो मा लैसा लकुम बिही इल्म, वो बात मोमिन नहीं कहता जिसका उसके पास सबूत ना हो, वता सबूनहु हैयिनन, और तुम इसको समझ रहे हो कि बड़ा छोटी सी बात है, कोई बात नहीं, एक नेक बीवी पर इल्जाम लगा है और तुम गली गली बताते फिर रहे हो, वह हुआ इंदल्लाही अजीम, अल्लाह के नज़दीक ये बहुत संगीन बात है। बहुत बड़ी बात है कि तुम एक खातून पर इल्जाम लगाए और उछालते फिर रहे हो। तो होना क्या चाहिए था कि वलौला इजा समेतुमूहु कुलतुम मा यकून लना अन नतकल्लम बिहाजा। जैसे ही इस तरह की कोई बात सामने आती है तो तुम कहते हैं कि हरगिज़ नहीं, हम इस तरह की बात नहीं कर सकते। हाजा बहुत सुभाना का हाजा बहतान अजीम, नहीं, अल्लाह माफ करे, ये बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा बहतान है, हम ये नहीं कह सकते। तो मोमिन क्या है? मोमिन जो कहे नपी तुली बात, सच्ची बात जिसका सबूत हो, वो बात कहने वाला होता है, वो सुनी सुनाई बातें आगे नहीं कहता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक हदीस मुबारक में ये फरमाया है कि किसी आदमी के झूठा होने के लिए इतनी बात काफी है कि सुनी सुनाई बात आगे कर दे। तो यहां पर उसी बात को, तो ईमान वाला जो आदमी है वो ये हरकत नहीं करता। तो चुनाचे अल्लाह ने फरमाया या आइज़ुकुमुल्लाह अन तऊदू लिमिस्लिही, अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है कि आइंदा ऐसी हरकत ना हो, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। तो ईमान ये तकाजा करता है कि हम दूसरों की इज्जत के पासवान हों, हमें कोई आकर बात बताए तो फौरन ना मान लें, सबूत मांगे कि क्या सबूत है तुम्हारे पास, सबूत मांगने का अमल करना शुरू कर दें। तो वैसे ही ऐसे लोगों के हौसले खत्म हो जाते हैं। तो चुनाचे चुगली, गीबत, तोहमत, इल्जाम, दूसरों के बारे में बैठ के अकेले बातें करते रहना, उल्टी सीधी बातें हांकते रहना, ये सारा कुछ ईमान के मुनाफी है। यहां तक कि किसी को गाली देना, किसी का नाम रखना तक ये ईमान के मुनाफी है। ये सूरह अल बकरा की आयत है कि या अय्युहल लजीना आमनू ला तुबतलू सदकातकुम बिलमन्नि वल अज़ा। मोमिन आदमी जो है वो अपने ईमान की वजह से जब नेकी करता है, तो हमने पहले भी ये बात की शायद मुस्लिमीन वाली सिफात में या मुत्तकीन वाली सिफत में, तो उसमें हमने ये बात की कि मोमिन नेकी आखिरत के लिए करता है, क्योंकि उसके अंदर ये खुदा के साथ खुदा से बदला लेने का आखिरत अंदेशी होती है, आखिरत के लिए वो कर रहा होता है। तो इसलिए जब वो दुनिया में सदका देता है तो दो काम फिर नहीं करता, एक एहसान नहीं जताता कि देखो मैंने तुम्हें ये दिया था, मैंने तुम्हें ये दिया, और दूसरा वो अजियत नहीं देता। मसलन किसी मजलिस में बैठोगे, ये कपड़े तो मैंने इसको दिए हुए हैं, तो आपने पूरी मजलिस में उसको जलील कर दिया है, तो अजियत देंगे तो यह काम नहीं करवाते। एक जगह अल्लाह ताला ने यह भी कहा है, अजियत देना, पैसे देकर, सदका देकर उसके नतीजे में काम करवा लेना और एहसान जताना, ये नेकी को जाया कर देता है। तो अल्लाह ताला ने कहा है, ऐ ईमान वालो, तुम अपने सदकात को मन एहसान जताकर व लजा और अजियत देकर जाया ना किया करो। तो गोया मोमिन मोमिन के वस्फ ये है कि वो नेकी करके भूल जाता है, जिस तरह हमारे उर्दू मुहावरे में या पंजाबी मुहावरे में कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, तो नेकी का दरिया में डाल, ये मोमिन का वस्फ होता है कि उसने नेकी की दरिया में डाल दी कि कल खुदा के हाथ से इसका अजर लेंगे, और वो कोई एहसान नहीं जताता, कोई अजियत नहीं देता, लोगों से काम नहीं लेता सदका करने के बाद, और ये तवक्को नहीं रखता कि मैंने ये किया था तो अब ये मेरे लिए अच्छा करे, उसने अल्लाह के लिए किया था तो बस अल्लाह पर छोड़ देता है। ये सूरह अल-बकरा ही की आयत है, वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात उलाइका असहाबुल जन्नत हुम फीहा खालिदून। ईमान और अमले साले ये दो जोड़ीदार हैं, जो दोस्त हैं, फल है एक दूसरे का, नतीजा है, लाजम मलजूम है। जिस आदमी के अंदर ईमान हो, तभी हमने तफसील से देखा कि वो क्या क्या नेकियां करेगा, उसके रवैये में क्या क्या पाकीज़गियां होंगी। तो ये आदमी जो ईमान वाला है वो जब अमले साले करता है तो इन दो चीज़ों के मिल जाने के बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जन्नत वाले हैं। खाली ईमान कोई चीज़ नहीं है और खाली अमले साले कोई चीज़ नहीं है, ये वाज़े रहना चाहिए, क्योंकि खाली ईमान सिर्फ आपकी जहनी बात है, वो आपके वजूद का हिस्सा नहीं बनी, और खाली अमले साले वो दुनियादारी के लिए होता है। ईमान के साथ जो अमले साले होता है वो आखिरत के लिए होता है, और जो अमले साले ईमान के बगैर होगा वो आखिरत के लिए नहीं हो सकता, इसलिए उसका अजर नहीं मिलेगा। और जो ईमान है और उसमें अमले साले पैदा नहीं किया, तो इसका मतलब है कि वो एक गले सड़े बीज की तरह है कि आपने बीज बो दिया है लेकिन कोई पौधा नहीं निकला। तो ईमान से कुछ ना कुछ तो अमल ढलना चाहिए, कुछ ना कुछ तो खूबियां सादर होनी चाहिए। तो ईमान और अमले साले ये दोनों मिलते हैं तो दरअसल मुकम्मल मोमिन बनता है, मगर ना वो मोमिन मुकम्मल नहीं है। तो जो आदमी मोमिन मुकम्मल हो जाएगा ईमान और अमले साले दोनों के जरिए से, वो जन्नत का मुस्तहिक होगा। तो इस बात पर हम बात खत्म करते हैं। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।